आइए पंचदशी के ध्यान दीप का 16वां श्लोक। चतुर्भुजा द्योवगत वपि मूर्ति मनो लिखन अक्षय परोच ज्ञानैव न तदा विष्णुमीक्षते। चतुर्भुजाद्यवगता वपि मूर्ति मनो लिखन अक्षय परोक्ष ज्ञानैव न तदा विष्णुमीक्षते। ननु शास्त्रेण विष्णुवादि मूर्ते है चतुर्भुजत्वादि विशेष प्रतीते तदज्ञानस्यापि कुतः परोक्षत्वम् इति आशंक्याः। शंका किया कि शास्त्र के द्वारा विष्णु आदि जो मूर्ति हैं, विष्णु शिव कृष्ण राम चतुर्भुज आदि विशेषता की प्रतीति शास्त्र के द्वारा होती है, हमारे आंख से तो होती नहीं। सीधी बात, जैसे आधुनिक लोग बोलते हैं ना कि शास्त्र बता रहा, आंख से तो दिखती नहीं, वही बात कह रहे हैं कि भाई शास्त्र के द्वारा सिद्ध है कि भगवान विष्णु को चार भुजाएं, शिव जी अष्ट दुर्गा अष्ट भुजधारी, शिव जी कितना भुजा, शिव जी को भी तो आठ दस भुजा, हाँ दस भुजा है, पांच मुख तो दस भुजा, दुर्गा जी को कितना भोगा भुजा होगा, नहीं ज्यादा, ज्यादा होगा, आठ मुख है ना तो सोलह होना चाहिए। अष्टभुजी दुर्गा लिखा, अष्टभुजी दुर्गा स्यात्, दुर्गा को आठ भुज है, हाँ अष्टभुजी है, अष्टभुजी दुर्गा स्यात्, तो आठ भुजा, आठ भुजा चार चार हो गए, चाहे इधर चाहे इधर, अष्टभुजी दुर्गा स्यात् ऐसा वाक्य मिलता, आठ भुजाएं। तो ये शास्त्रों से प्रत्यक्ष है, हमारे आंख से नहीं है, तो इसको भी आप भ्रम मान लो, अयथार्थ मान लो, मिथ्या मान लो। पूर्व पक्षी बोल रहा हो जाएगा ना, चार इधर चार इधर, हाँ अष्टभुजी दुर्गा स्यात् तो ठीक तो है, चार इधर चार इधर आठ, मतलब चार बाएं लेंगे चार दाहिने तो आठ भुजाएं हो जाएंगे, तो हो गया आठ, आठ भुजी दुर्गा, दुर्गा जी को आठ भुजा मानते, विष्णु भगवान को चार मानते, और शिव जी के पांच मुख है ना तो दस हो जाते हैं। तो कहते सारी बातें शास्त्र के द्वारा ही प्रत्यक्ष है, हम तो आंख से देखते नहीं, तो ये इसका मतलब कि यथार्थ नहीं है। शास्त्रेण विष्णुवादि मूर्ते चतुर्भुजत्वादि चार भुजा और शंख चक्र गदा पद्म ये प्रसिद्धि है प्रतीति। तद ज्ञानस्यापि कुतः परोक्षत्वम्, उसका ज्ञान भी परोक्ष कैसे है, तब उत्तर दे रहे कि चतुर्भुजादि अवगतौ अपि, चार भुजाएं तो शास्त्र से अवगत है, अवगत मतलब ज्ञात है कि विष्णु को चार भुजा, दुर्गा को आठ भुजा, शिव को दस भुजा, राम जी को दो भुजा, कृष्ण भगवान को दो भुजा, ये पीताम्बर धारी है, ये बाघम्बर धारी है, ये दिगंबर है ना, ये श्वेताम्बर, ये शास्त्रों के द्वारा अवगत मतलब प्रत्यक्ष है। मूर्तिम अनुलिखन, हमारे सामने वह मूर्ति प्रत्यक्ष नहीं है, उल्लिखन बोलते हैं कि अनुभव में आना, अनुलिखन बोलते अनुभव में नहीं आ रहा है। अक्षय परोक्ष ज्ञानेव, अक्ष बोलते इंद्रियां, इंद्रियों से केवल परोक्ष ज्ञान होता है, परोक्ष ज्ञान अनुमान की तरह से, देखो अनुमान हमेशा परोक्ष होता है, अनुमान परोक्ष, आंख से केवल धुआं दिखाई पड़ता है वह नहीं तो परोक्ष है, तो अनुमान करते धूम देखकर, ऐसे शास्त्रों के द्वारा हम अनुमान करते हैं कि भगवान को चार भुजाएं होनी चाहिए, आठ भुजाएं होना चाहिए, दस भुजा अनुमान है ये। ये पूर्व पक्ष बोला न तदा विष्णु मिच्छते, विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। शास्त्रेण चतुर्भुजत्वादि विशेष प्रतीतौ अपि, शास्त्र से चार भुजा विष्णु के हैं, शिव के दस भुजा, दुर्गा के आठ भुजा, विशेष की प्रतीति होने पर भी चक्षुरादि भी आंख आदि के द्वारा विष्णुवादि मूर्ति अभिषय कुर्वन, विष्णुवादि मूर्ति विषय नहीं होते, विषय मतलब अनुभव नहीं आता है। देखा ना विषयी अकुर्वन, ये देखो विषय में च्वी पड़ते हैं, च्वी पड़ते हैं, च्वी पड़ते होता है अभूत तद्भाव में, अभूत तद्भाव, जो चीज नहीं हो करना हो तो च्वी पड़ते करेंगे। ऐसे अशुक्लम शुक्ली क्रियते, ये सफेद है शुक्ल कर दिया, अकृष्णम कृष्णी करोति, ये सफेद इसको काला करना है तो बोलेंगे कि इसका नाम संस्कृत में क्या होगा, कागज को पुस्तक पत्रिका बोलो, पत्रिका हाँ, अशुक्लम कृष्णी करोति तो कृष्णी बन जाएगा, दीर्घ हो जाएगा कृष्णी करोति, च्वी पड़ते होगा, च्वी होने के बाद दीर्घ होता है। यहां विषय अविषय कुरुवर मतलब अनुभव में नहीं आता है। तो शास्त्रों से सुन तो लिया हमने, परंतु अविषयी कुर्वन हमारे आंख का विषय नहीं हो रहा। तो परोक्ष ज्ञान, ज्ञानी एव परोक्ष ज्ञान हुआ, परोक्ष ज्ञानी एव तत उपपत्ति मा उपपत्ति है न तदेति। ब्रह्म ज्ञानी अब्रह्मज्ञ दोनों मंत्र है कि नहीं? ब्रह्म ज्ञानी का मतलब कि शास्त्र के द्वारा वेदांत के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान है, टिप्पणी बना हुआ है। जब बोलेंगे फला आदमी ब्रह्म ज्ञानी है तो मतलब कि शास्त्र के द्वारा ब्रह्म ज्ञान वाला है, ब्रह्म रूप नहीं हुआ भी ब्रह्म ज्ञान वाला है। तो ज्ञानी अलग है और ब्रह्म अलग है। तो ब्रह्म ज्ञानी बोलने का मतलब हुआ कभी त्रिपुटी का भान है, परोक्ष ज्ञान है, शास्त्र के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान हो गया, तदवान को बोलेंगे ब्रह्म ज्ञानी, और अपरोक्षानुभूति हो गई तो ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति, वो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म रूप हो गया। दोनों में अंतर बड़ा भारी, ब्रह्मज्ञानी बोलना सामान्य बात है, कोई बड़ी प्रशंसा नहीं है। ब्रह्मज्ञानी तो आप भी हो सकते हैं ही, कि शास्त्र के द्वारा आपने ब्रह्म को का ज्ञान हासिल कर लिया तो ब्रह्मज्ञानी कहलाएंगे। शास्त्र श्रुति उपनिषद के द्वारा जो ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान है तद्वान को बोलेंगे ब्रह्मज्ञानी, और अपरोक्षानुभव हो गया तो ब्रह्म वेद ब्रह्मी भवती ब्रह्म रूप। तो आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं, आपको ब्रह्म रूप होना है, ब्रह्म बिल्कुल ब्रह्म वही बोल रहे, परोक्ष ज्ञानी एवं परोक्ष ज्ञानी है वो, आप परोक्ष ज्ञानी नहीं है। तत्र उपपत्ति मा, उसमें तरक, क्या तरक है, न दा विष्णु मिच्छते, विष्णु को देखता नहीं। तदा उपासना काले विष्णु उपास्यम नेक्षते नेन्द्रिय विषयी करोति, त्यर्थ उपासना काल में विष्णु उपास है उनको इंद्रिय से विषय नहीं करता है। इंद्रिय मतलब कि चक्षुरादि के द्वारा उनका साक्षात्कार नहीं करता है। अब फिर शंका कर रहे हैं, इसको बोलेंगे संवादी भ्रम, संवादी भ्रम। सामने तो एक शिला खंड है तो शिला चिन्मय विष्णु तो हो नहीं सकती, तो चिन्मय विष्णु के अभाव वाले पाषाण में विष्णु बुद्धि करना संवादी भ्रम, और संवादी भ्रम के द्वारा एक दिन उसका परोक्षानुभव हो जाए तो बोलेंगे सफल प्रवृत्ति हो गई। और जगत में जो बुद्धि करते सच्चित आनंद का, उसमें आनंद क्या भाव वाले जगत में चाहे कितना भी दौड़ लगाओ बुढ़ापे तक आनंद हासिल नहीं होगा, सत्ता आपकी नहीं रहेगी। ज्ञान भी बुढ़ापे में विस्मित हो जाती है, होता है ना। प्रत्येक आदमी अपना सत्ता बनाए रखना चाहता है, इसको सत बोलते हैं, सत्ता बनाए रखना। चाहे कैसा भी दुबला पतला मरियल हो काला कल्टा, पर वो भी जब दर्पण के पास जाता है ना तो या तस्वीर बनवा दा खूब बढ़िया, दूसरे का नहीं अपना ही बनाएगा। लोग कह रहे कि भाई तुम दुबले पतले हो मरियल हो काले हो, तो क्या कहता है कि मैं दधीची के समान वज्र के समान हमारी हड्डियां हैं। और क्या बोलता है कि मैं काला नहीं श्याम सुंदर हूं। तो मतलब कि आदमी अपने सत्ता को बनाकर रखना चाहता सत्य। और चित मतलब कि वो हमेशा अपने ज्ञान को सबसे बड़ा जो है समझता है, कि तो अपने ज्ञान को भी महत्व देता है। और तीसरा आनंद है, वो चाहता कि हमेशा मैं आनंदमय रहूं। तो आनंद प्राप्ति के लिए विषय का संचय, विषय की हिफाजत रख रखाव करना, ये आनंद तीन हो गए। तो ये तीन चीज की शरीर में जगत में जो है ना देखना है दौड़ना है पाने की इच्छा रखना, ये हो गया विसंवादी भ्रम। क्योंकि बुढ़ापे आते आते बुद्धि भी ज्ञान भी विस्मित होने लगती है, सत्ता भी अपनी डवाडोल होने लगती है, आनंद भी धीरे धीरे छिनने लग जाता। तो मतलब कि संसार में देखो तीनों नहीं है। यदि हम पाषाण खंड में लकड़ी में मिट्टी में सच्चित आनंद की परमात्मा की नारायण की बुद्धि करके दौड़े, सुबह शाम भजन ध्यान चिंतन देवाचन करें, तो संवादी भ्रम होने के बावजूद भी एक दिन हमें उस आनंद की प्राप्ति होती। और मरने के बाद भी आपकी सत्ता लोग बना के रखते हैं, मरने के बाद भी लोग क्या करते हैं, देखो ये हमारे पितामह का बनाया हुआ शिव मंदिर है, हमेशा शिवार्चन करते थे, विष्णुवार्चन करते थे, प्रत्येक दिन जप करते थे ध्यान करते थे। तो भक्ति करने से आपकी सत्ता भक्त रूप से मौजूद रहती, और ज्ञान मतलब कि लोगों के बीच में आपका ज्ञान भी बना रहता, ऐसे थे। और आनंद मतलब कि आपके स्मरण से लोगों को आनंद मिलता है। तो संवादी भ्रांति से एक दिन सब कुछ मिल जाता, और विसंवादी भ्रांति किया हमने। विसंवादी मतलब कि संसार के विविध पदार्थों में अपने शरीर में इंद्रियों में सामान्य प्राणी प्राकृत प्राणी अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने में लगा रहता, थोड़ा बुद्धिमान आदमी शरीर से ऊपर उठ जाता, अपने बुद्धि में अधिक ज्ञान संचय करता है कि लोग मुझे ज्ञानी कहे विद्वान कहे। पर यह जो विषयों में सच्चित आनंद की है दौड़, वह बुढ़ापे आते आते धीरे धीरे सब जो है ना मिटने लगता है। बुढ़ापे में बुद्धि विस्मित होती, ज्ञान भी है ना, इसके बाद सत्ता भी छीनने लग जाती, और आनंद भी अपने आप उत्साह भी उल्लास भी उमंग भी भंग होने लगता है। तो विसंवादी प्रवृत्ति से बुढ़ापे में आने के बाद तीनों धीरे धीरे छीनने लग जाते। अच्छा, संवादी प्रवृत्ति यदि आपने किया बचपन से देवाचरण सत्संग चिंतन सुबिजन भजन ध्यान, तो उससे क्या होता है बुढ़ापे आने तक लोग क्या बोलते कि मैं देखता हूं फला बचपन से जवानी जवानी से बुढ़ापे तक बहुत भक्ति करते, प्रेमपुरी में सत्संग सुनने जाया करते, चिंतन करते, बहुत अच्छे हैं। तो आपका सत्ता भी बनी जाती है और चेतन ज्ञान भी और आनंद भी रहता है। तो कहा कि भाई संवादी भ्रम से आपका कल्याण मणि की प्राप्ति, विसंवादी भ्रम से केवल दीपक की प्राप्ति होगी। दीपक जानते ना, दीवा मिट्टी का, तो मिट्टी का दीवा तभी तक जलेगा जब तक तेल है, ये समझ लेगा। जिस झरोखे में मिट्टी का दीवा है उसमें जो तेल डाल रखा, तो जब तक उस मिट्टी के दीवा में तेल और बाती है तभी तक जलती बाद में बुझ जाता है। तो संसार में भी ये जब तक समझो कि आपका शरीर ठीक है, शरीर में प्रारब्ध आपके अच्छे है, प्रारब्ध क्या तेल के समान है, तभी तक ये बत्ती जलती है। मतलब कि लोग आपकी जी हाजुरी करते हैं, आनंद आता। जैसे वो तेल सूख गया, बत्ती जल गई, लोग क्या बोलते, कचरा हो गया, हटाओ निकालो बाहर फेंको, इस संसार में ले जाकर स्वाहा अग्ने स्वाहा। ईशावास्य का 18वां मंत्र है ना, अग्ने नय सुपथाराए अस्मान विश्वान देवयुनानि कर्माणि युद्धस्मज्जोराणाम एनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिम विधेम। तो ये मंत्र शमशान में बोला जाता है, जब शमशान होता है इस मंत्र को बोल करके इस शरीर को अग्नि में हवन कर देते। तो प्रार्थना करते हैं कि भाई अब जो है ना, जितना करना था कर लिया, आगे बन नहीं सकता है, इसलिए जो भी कुछ हमारे जुराना मतलब पाप है उसको ध्वंस कर दो, नष्ट करो, हमें सन्मार्ग से ले चलो, ही अग्नि देवता से प्रार्थना करते हैं। तो संवादी प्रवृत्ति से आपको अपने जीवन के चिंतामणि की उपलब्धि, और विसंवादी मतलब कि आपने दीपक को मान लिया चिंतामणि, तो आप उस दीपक के रोशनी को चिंतामणि मानकर दौड़ते दौड़ते बुढ़ापे तक आते हैं। जैसे प्रारब्ध का तेल सूख गया तो दुनिया वाले घर वाले भी किनारे कर देते, कहते जाओ बारप्रस्थ आश्रम में, है कि नहीं। तो दोष अपना है, दुनिया का नहीं। यदि संवादी से चलते तो आदर करते, बोलते यही रहो पिताजी, यही रहो भाई साहब, आप कराने से बड़ा घर में अच्छा लगता है। तो संवादी करने का प्रवृत्ति नहीं, विसंवादी नहीं, वही बता रहे हम। ननु विष्णुवादि गोचर ज्ञानस्य व्यक्ति उल्लेखित्वा भावात ब्रह्मत्वम इत्याशंक्य प्रमाणेन जनितत्वात न ब्रह्मत्वम इत्याह। पूर्व पक्षी कहता है विष्णुवादी विषयक जो ज्ञान है, गोचर बोलते विषय को, गो मतलब इंद्रियाणी, गो का अर्थ इंद्रिया, चर का अर्थ गति भक्षणयो धातु, चर गति भक्षणयो धातु अर्थ है। तो इंद्रिया जिस चीज का विषय करे उसको गोचर बोलते हैं। जैसे कि आंख का गोचर है रूप, कान का गोचर है शब्द, गो मतलब इंद्रिया, चर मतलब की गति भक्षण उनकी प्राप्ति, दो अर्थ में होता है धातु, गो है ना चर भक्षण यो, चर मतलब गति अभक्षण, दो अर्थ में प्रयोग होता है ये धातु का। आगे देखिए, तो विष्णुवादी जो गोचर जो ज्ञान है मतलब विषयक, ऐसा करना विष्णुवादी विषयक जो ज्ञान व्यक्ति उल्लेखित्वा भावात, व्यक्ति मतलब पदार्थ का तो अनुभव होता नहीं, तो उसको क्या मान लो, भ्रम मान लो। पूर्व पक्षी बोल रहा, जैसे आज के दुनिया वाले बोलते हैं ना कि आप लोग बोलते भगवान भगवान, भगवान कहां दिखता है, वही बात पूर्व पक्षी यहां बोल रहा अपनी भाषा में। आप कहते भगवान विष्णु को 4 भुजाएं, शिव जी को 10 भुजाएं, दुर्गा जी को 8 भुजाएं, शेर की सवारी दुर्गा जी करती है, विष्णु भगवान गरुड़ महाराज की, भगवान शंकर ऋषभ की, पर किसी ने देखा, वही सवाल यहां कर रहे भाई, शास्त्रों से सुनते हम भी, पर क्या किसी ने अपने आंख से देखा, बोले नहीं देखा। तो सीधी बात है, भ्रांति है, ये क्या है, भ्रम है, भ्रांति है। ब्रह्म अवकल्पने से ब्रह्म बनता, अवकल्पन करता है, उन्हें कल्पना करता कई तरह से, वो संशय होता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ब्रह्म में निश्चय नहीं होता, संशय होता है कि हो भी सकता। शास्त्र का रात क्या पता हो और अनुभव नहीं हो रहा, मतलब नहीं हो सकता, इसका नाम भ्रम है। ऐसी आशंका होने पर प्रमाणेन जनितत्वात् न ब्रह्मत्वम इत्याह। सिद्धांती कहता देखो भाई, भले ही तुम्हारे इंद्रियों का विषय नहीं हो रहा, परंतु प्रमाण से जन्य होने से भ्रम नहीं है, प्रमाण से जन्य है। परोक्षत्वापराधेन भवे नातत्ववेदनम्, प्रमाणेनैव शास्त्रेण सत्वमूर्ते विभासनात्। परोक्षत्वापराधेन भवे नातत्ववेदनम्, प्रमाणेनैव शास्त्रेण सत्वमूर्ते विभासनात्। परोक्षत्व अपराधेन, परोक्षत्व के अपराध से आप उसको यथार्थ नहीं बोल सकते। भवेत न अतत्ववेदनम्, अतत्व वेदन नहीं है। प्रमाणेनैव शास्त्रेण, प्रमाणिक शास्त्रों के द्वारा उसका प्रतिपादन होने से सत्य मूर्ति विभासनाद, वह मूर्ति सत्य है, वह यथार्थ नहीं हो सकता है। प्रमाणिक क्या? आगम शास्त्र, वेद शास्त्र कह रहा। परोक्ष ज्ञानत्वम भ्रांति ज्ञानत्वे कारणम न भवति, परोक्ष ज्ञान भ्रांति ज्ञान का कारण नहीं है। यह व्याप्ति नहीं बना सकते कि यत्र यत्र परोक्ष ज्ञानत्वम तत्र भ्रांतित्वम, यह व्याप्ति नहीं बन सकती है। बल्कि यह हो सकता व्याप्ति कि यत्र यत्र तत्वावेदकत्वम तत्र प्रमाणिकत्वम, तत्व का आवेदक होने से प्रमाणिक है, ये व्याप्ति बनेगी। किंतु विषयासत्वम, जहां जहां विषय असत्य हो वह वस्तु अप्रमाणिक होती है। विषय असत्य ही अप्रमाणिकत्व की व्याप्ति है। जैसे सीपी में चांदी दिखाई दे रहा, जब वहां गए चांदी नहीं मिली, विषय असत्य है तो अप्रमाणिक हो गया। पर यहां पर भले ही आपको नहीं दिखाई दे रहा है लकड़ी में सालग्राम में विष्णु भगवान, परंतु वह एक दिन अनुभव में आएगा जब भजन करेंगे, तो इसलिए वो प्रमाणिक है, तत्व का आवेदक है। आवेदक बोलते बोधक, तत्व का बोधक है। तो जहां जहां तत्वावेदकत्व होता है वहां वहां प्रमाणिकत्व होता है, नियम है। यह तत्वावेदकत्व तत्व प्रमाणिकत्व ये व्याप्ति है। अच्छा, देखिए प्रमाण में मिथ्या में ये व्याप्ति नहीं है, प्रमाण मिथ्या की व्याप्ति नहीं। जगत मिथ्या है, ठीक है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। और जब जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है तो ये जो जितना भी व्यवस्था है, प्रत्यक्ष अनुमान आगम जो भी कुछ, सब जगत के गर्भ में है, यह भी मिथ्या हो गया। दो सत्य तो आप मान नहीं पाएंगे, सिद्धांत की हानि होगी। सत्य एक है, अद्वितीय ब्रह्म है, और सब मिथ्या है। सब मिथ्या है तो मिथ्या के गर्भ में ये शास्त्र भी आ जाएगा, है ना, सारी व्यवस्था आ जाएंगी, प्रत्यक्षादि अनुमान भी आ जाएंगे। पर मिथ्या होने पर भी ये अप्रमाणिक नहीं है। जो शास्त्र आदि है भले मिथ्या है, पर मिथ्या होने पर भी अप्रमाणिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अप्रमाणिक उसे कहते हैं जहां लिखा ना विषय का जो अपरोक्ष न हो। जहां पर तत्वावेदकत्व उसको प्रमाणिक मानते हैं, तो शास्त्रादि के अनुमानादि के मिथ्या होने पर भी तत्वावेदक होने से प्रमाणिक है। आगम से तत्व का साक्षात्कार होता है, आंख से रूप का ज्ञान हो रहा तो आंख प्रमाणिक है, कान प्रमाणिक है, शब्दों का हम सुनते हैं, इसीलिए तो व्याप्ति यह बनेगी। आवेदक बोधक, आवेदक अनि जहां जहां तत्वावेदक हो वहां वहां प्रमाणिकत्व होता है, और जहां जहां विषय असत्य हो, लिखा ना विषयासत्व, लिखा ना यहां पर विषयासत्यत्व, जहां जहां विषय असत्य हो उसको अप्रमाणिक बोलते हैं। तो प्रमाणिकत्व मिथ्यात्व के साथ व्याप्ति नहीं बना सकते आप। ये जगत मिथ्या है, इसका मतलब यह नहीं कि जगत अप्रमाणिक है। जगत मिथ्या होने पर ही प्रमाणिक है, क्योंकि विषय अपरोक्ष हो रहे। शुक्ति रूपयादि रज्जु सर्प मिथ्या होने पर भी अप्रमाणिक है, क्योंकि विषय असत्य है। ये व्याप्ति बनाना, अच्छा ये सब बात बड़े ग्रंथों में विस्तार से लिखते हैं। यह तो प्रमाण भूतेन शास्त्रेण यथार्थ भूताया विष्णुआदि मूर्ति अभासनात न भ्रमत्वम। यहां पर प्रमाण भूत जो शास्त्र है उसके द्वारा यथार्थ भूत विष्णुआदि मूर्ति की प्रतीति होती है, इसलिए इसको भ्रम नहीं कह सकते आप। तो शास्त्र प्रमाणिक है, तो शास्त्र से प्रत्यक्ष है। भले ही हमारे आंख से स्वर्ग नरक प्रत्यक्ष नहीं है, मान लिया हमारे दृष्टि से स्वर्ग नरक धर्म धर्म प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी उसको हम अप्रमाणिक नहीं मान सकते। आंख से प्रत्यक्ष है कि आकाश नीला है, फिर भी नीला नहीं मानते, क्योंकि नीलिमा आरोपित है। नीलिमा आपका वह जो है ना प्रसंजीत आरोपित है, आंख से दिखाई दे रहा कि आकाश नीला है, ये गोल मटोल है, उल्टी कढ़ाई के समान है, फिर भी हम उसको वैसा नहीं मानते। तो यहां पर भी धर्माधर्म स्वर्ग नरक भले आंख से प्रत्यक्ष न हो, शास्त्र से प्रत्यक्ष है, आगम से प्रत्यक्ष है, इसलिए प्रमाणिक है। वही बता रहे कि प्रमाण भूतिन शास्त्रेण यथार्थ भूताया यथार्थ भूत विष्णुआदि मूर्ति की अभासनता मतलब प्रत्यक्ष होने से न भ्रमत्वम भ्रम नहीं कह सकते हैं। ननु सच्चिदानंद व्यक्ति उल्लेखिनो ब्रह्म तत्व ज्ञानस्य शास्त्र जन्यस्यापि कुतः परोक्षता इतिआशंक्य अपरोक्षत्व प्रयोजक प्रत्यक उल्लेखाभावात इत्याह। पूर्व पक्ष ने कहा भाई सच्चिदानंद जो पदार्थ है वस्तु है उसका उल्लेखिनो मतलब प्रतिपादन करने वाला ब्रह्म तत्व ज्ञानस्य ब्रह्म तत्व ज्ञान तो शास्त्र से जन्य है, वह भी कुतः परोक्षता कि उससे परोक्ष कैसे हो रहा। तब कह रहे कि अपरोक्षत्व प्रयोजक प्रत्यक्त उल्लेखा भाव अपरोक्षत्व का जो प्रयोजक है ऐसा प्रत्यक्त का उल्लेख नहीं है, अंतरात्मा में उसका अनुभव नहीं हो रहा है। ये बता रहे प्रत्यक मतलब अंतरात्मा में अनुभव नहीं हो रहा है। 18 में इसी बात को बता रहे सच्चिदानंद रूपस्य शास्त्राद् भानिप्यनुलिखन् प्रत्यञ्चं साक्षिणं तत्तु ब्रह्म साक्षात् न वीक्षते। सच्चिदानंद रूपस्य शास्त्राद् भानिप्यनुलिखन् प्रत्यंचम साक्षिणम तत्तु ब्रह्म साक्षात् न वीक्षते। सच्चिदानंद रूपस्य शास्त्रों के द्वारा सच्चिदानंद रूप आपका भान मतलब की प्रत्यक्ष है शास्त्र के द्वारा। तो शास्त्र प्रत्यक्ष है कि ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, अनुलीखन परंतु हमारे को अनुभव में नहीं आ रहा। प्रत्यंचम साक्षिणम तत्तु, जो प्रत्यगात्मा साक्षी है वही ब्रह्म है, साक्षात न विक्षते, साक्षात उसका स्वात्मतया अनुभव नहीं हो रहा, यही प्रमाण है। तो भले ही आपको अनुभव में नहीं आ रहा है, फिर भी शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष होने से आप उसको अप्रमाणिक नहीं कह सकते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप और अनंत ब्रह्म है, न देश से न काल से न वस्तु से न अवस्था से न व्यवस्था से, किसी का से अंत नहीं होता है। अंत बोलते हैं परिच्छेद सीमांकन, न कोई देश की सीमा, जैसे मान लो यहां पर हम लोग बैठे हैं तो एक देश की सीमा है कि हम बंबई तक ही है। काल की सीमा का मतलब है ये चीज अभी हुई और कल नहीं होगी, ये काल का सीमा। वस्तु मतलब कि ये चाबी है ये पुस्तक नहीं हो सकता, वस्तु की सीमा है। आप मनुष्य हैं पशु नहीं हो सकते, ये वस्तु की सीमा है। परंतु परमात्मा देश की सीमा नहीं क्योंकि व्यापक है, काल की नहीं क्योंकि उसका नाश नहीं है, और उसमें वस्तु की सीमा नहीं क्योंकि व्यापक है, व्यापक में वस्तु की सीमा नहीं होती है। अवस्था व्यवस्था नहीं क्योंकि वह चैतन्य रूप है। अवस्था उसकी गिनी जाती जो जड़ हो, चेतन होने से अवस्था से नाप नहीं सकते। व्यवस्था नहीं क्योंकि वह सर्वगत है, सर्वगत में व्यवस्था नहीं होती। व्यवस्था है ना, कितना भारत है कितना पाकिस्तान है, ये व्यवस्था नहीं बना सकते क्योंकि सर्वगत है आत्मा। इसलिए अनंत है मतलब कि उसमें कोई परिच्छेद नहीं है। अंत बोलते परिच्छेद को, सीमा को, उस वह असीम होने से अनंत है ब्रह्म। नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य मुक्त निरंजन है, नित्य है शुद्ध है, बुद्ध मतलब ज्ञान स्वरूप है, सत्य है मुक्त मतलब कोई बंधन नहीं है। निरंजन बोलते, निरंजन का अर्थ है निर्गत अंजना, अंजना अविद्या का है, निर्गत अविद्यादय अंजना यस्मात, जहां से अविद्यादि अंजन निकल चुके उसका नाम निरंजन है। हाँ, अविद्या बोलते अंजन को, अविद्या नाम अंजन, वह संजन बोलते हैं जो लगाते ना आंख में काजल, काजल को भी संस्कृत में अंजन बोलते हैं। तो अविद्या भी तो काजल की तरह है ना, काजल काला काला है पर इतना समीप है ना अपने इससे पलक से कि दिखाई नहीं पड़ता, अति सामीप्यात, काजल और आंख की इतनी समीपता है कि आप अपनी आंख से काजल को देख नहीं पाते। ऐसे अविद्या इतना समीप है, इतना समीप चिपकी है आपके अंतःकरण में, अविद्या दिखाई नहीं पड़ती है। तो कह दिया कि निरंजन है, अविद्या रहित है। सदिदम सर्वम तत्सदिति, सब कुछ ये सत ही है, तत् सत है। तत्कार्थे बेल से प्रतिपाद्य, वह पुरुष सत है। इत्यादि शास्त्र शास्त्रात सच्चिदानंद रूपस्य ब्रह्मणो भाने पी प्रत्यंचम साक्षिणम अनुलिखन। इस प्रकार से शास्त्र से ब्रह्म का तो भान हो रहा है, भान मतलब कि ब्रह्म है ऐसा आपको स्रोत अनुभव है, इसको बोलते हैं श्रावण अनुभव, सुनकर अनुभव किया, स्रोत अनुभव है। परंतु मानस प्रत्यक्ष नहीं हुआ, अंतरात्मा को अनुभव नहीं हुआ। वो बोल रहे ब्रह्म का भाने पी प्रत्यंचम साक्षिणम अनुलिखन, प्रत्यंच का अर्थ है कि हमारी अंतरात्मा में उस साक्षी का अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ अंतरात्मा, हाँ मतलब कि अनुभव नहीं हो, उल्लिखन बोलते अनुभव को। वह जो प्रत्यंच है, जो साक्षी है, प्रत्यंचम का अनुवाद किया साक्षिणम, जो आपका साक्षी है ना उसका अनुभव नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। उल्लिखन बोलते अनुभव को। कस्य ब्रह्मण प्रत्यगात्म रूपत्व अजानत, उस ब्रह्म को आप जान तो लिए, आपने ब्रह्म का ज्ञान तो हासिल कर लिया शास्त्रों के द्वारा, उपनिषद के द्वारा, वेदांत रामायण भागवत के द्वारा, ब्रह्म सच्चिदानंद है, व्यापक है, कण कण में है, जन जन में है, अजर अमर है, परंतु अपनी अंतरात्मा में साक्षी रूप से अनुभव नहीं हो रहा है। और जब तक यहां नहीं होगा तब तक काम पूरा नहीं बनेगा। तो उसके लिए जो प्रतिबंधक है ना, बुद्धिमान विषयाशक्ति दुराग्रह, उसको दूर करने के लिए कांटे से कांटे को निकालते हैं। अब पैर में 25 कांटा चुभा है, 26वां कांटा लिया, अब सोचो कि भाई कैसे चुभाए, 25 तो पहले चुभा है, 26वां कैसे, तो काम नहीं बनेगा। उससे सबको निकाल कर उसको ही फेंक दो, बात खत्म। ऐसे ही आपको संवादी भ्रम मतलब उपासना करनी पड़ती। उपासना करने के बाद जब चित्त निर्मल होगा तो अपने आप आपकी अंतरात्मा में उसका अनुभव होने लग जाता, ये बता रहे हैं। तस्य ब्रह्मण प्रतिगात्म रूप तुम अजानत, प्रतिगात्मा रूप से नहीं जानने से तद ब्रह्म साक्षात निक्षति नहीं पश्यति, उसका साक्षात अनुभव नहीं होता है, यह बता रहे हैं। 19 में एकदम साफ लिख दिया, 19 में कथम तरी तथा विधत ब्रह्म गोचरस्य ज्ञानस्य तत्व ज्ञानत्वम इत्याशंक्या, तरही तो फिर तथाविद जो ब्रह्म है, तथाविद का अर्थ सच्चिदानंद जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की गोचर जो विषयक जो ज्ञान है जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, कैसे होगा? तब बता रहे आगम प्रमाण जन्यत्वात् इत्याह, आगम प्रमाण से जन्य है, यह उत्तर दिया। शास्त्रोक्ति नैव मार्गेण सच्चिदानंद निश्चयात् परोक्षमपि तज्ज्ञानम् तत्त्वज्ञानम् न तु भ्रमः। शास्त्रोक्ते नैव मार्गेण सच्चिदानंद निश्चयात् परोक्षमपि तज्ज्ञानम् तत्त्वज्ञानम् न तु भ्रमः। सिद्धांती कहते हैं कि देखो भाई, शास्त्रोक्त मार्ग के द्वारा सच्चिदानंद का पहले निश्चय करो। जैसे आप अपने बेटे को समझाते हो कि देख भाई, तेरा अनुभव नहीं है, गांव में दुकान चलने वाली नहीं, वहां लोगों की संख्या भले हजारों की संख्या में भीड़ बहुत है पर नहीं चलेगी, शहर में चौराहे पर दुकान खोल, छोटी भी होगी तो चलेगी। तो बेटा क्या करता है, बाप के बात पर निश्चय कर लिया, उसको अनुभव नहीं, निश्चय किया, मान लिया, पिता की बात को गांठ बांध ली। इसके बाद उसने बीच चौराहे पर दुकान खोली तो अनुभव आ गया, बोले अरे बात तो सही निकली, यहां बड़ा अच्छा है। ऐसे पहले आपको शास्त्र की बात को गांठ बांध लेना है, निश्चय करना कि सच्चिदानंद परोक्षम भी तज ज्ञान, परोक्ष ज्ञान भी तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान है न तो भ्रम, भ्रम नहीं। भले ही हमें अनुभव में नहीं आ रहा, अनुभव पथ में न आने पर भी वह भ्रांति ज्ञान नहीं है, काल्पनिक ज्ञान नहीं है, वह यथार्थ है। जैसे स्वर्ग नरक आपके प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु आप विश्वास करते हैं कि सत्कर्म करने से स्वर्ग होगा और दुष्कर्म से नरक होगा, ऐसा विश्वास करके आप सत्कर्म में प्रवृत्त होते हैं, बुराइयों से आप बचते हैं। अब लोग बोलते हैं ना कि नई पीढ़ी में ज्यादा बुराई, बुराई तो होना ही, ये जो ज्ञान है प्रेमपुरी का, वेदांत का, यह ज्ञान यदि दुनिया के विश्वविद्यालय में अनिवार्य कर दी जाए, क्या ज्ञान कि जो है सत शास्त्र के सत्कर्म से स्वर्ग आनंद और बुरे कर्म से दुष्कर्म से नरक, तो कोई भी भ्रष्टाचार अनैतिकता अराजकता शोषण नहीं करेगा, तो डरेगा ना, हरे राम राम नरक जाना पड़ेगा, है ना, नरक में बहुत पीड़ा होती। अब किसी को ज्ञान ही नहीं है कि बुरे कर्म से नरक मिलता है, अच्छे कर्म से स्वर्ग मिलता है, तो वो बेचारा ज्ञानी जीव वह बुराई भलाई में पृथककरण नहीं कर पाता है कि बुराई का फल क्या, भलाई का फल क्या। ऐसा विवेचन न होने से, पार्थक ज्ञान न होने से बेचारा वह उन बुराई कर्मों में, भ्रष्टाचार में, अनैतिकता में, अराजकता में प्रवृत्त हो जाता है। तो दोष किसका है? शिक्षा का। सत शिक्षा हो तो आदमी के मन में भय रहेगा कि भाई गलत काम नहीं होना चाहिए, हो गया तो हमें दंड मिलेगा, नरक मिलेगा, पीड़ा होगी, तो अच्छा ही काम करेगा। वही बोल रहे हैं कि परोक्ष ज्ञान होने पर भी तत्व ज्ञान हो जाता है, उसको आप भ्रांत ज्ञान नहीं कर सकते। टीका देख लीजिए, तज ज्ञानम परोक्षम अपि शास्त्रोक्तेन एव प्रकारेण ब्रह्मण सच्चिदानंद रूप निश्चयायकत्वात् सम्यक् ज्ञानमेव न भ्रम इत्यर्थ। परोक्ष ज्ञान होने पर भी आपने सुना कि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का है, ऐसा परोक्ष ज्ञान होने पर भी वह तत्व ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो भ्रम नहीं है, क्योंकि आगम कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, उस शास्त्र कभी यथार्थ बात बोल नहीं सकता है। ऐसा दृढ़ विश्वास होने पर यदि आप चलते हैं तो वहां तक पहुंच जाएंगे। ऐसे मनुष्य मात्र को ज्ञान हो जाए कि भाई हमें सत्संग सुनेंगे तो सत्संस्कार पढ़ेंगे तो कुसंस्कार निकल जाएंगे, तो अपने आप आदमी सत्कर्म में, परोपकार में, समष्टि के शुभ चिंतन में लग जाएगा। जो समष्टि पूरा ब्रह्मांड है उसके शुभ चिंतन में अपने आप हमारा मन लग जाएगा। पर यह किसी को ज्ञान ही नहीं, क्योंकि आज की शिक्षा का मतलब क्या होता है? बस जैसे भी हो हमें कुल मिला के धन कमाना। दुनिया की सारी शिक्षा पद्धति का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, धन कमाना या संसाधन एकत्रित करना। वहां तो कोई सत्संस्कार का, सद्विचार का, स्वर्ग नरक का कोई शिक्षा तो है ही नहीं, तो भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे जो आदमी होगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप जाकर सबको बोलना कि भाई प्रेमपुरी आओ, तुम्हें आनंद प्राप्त करना है, शांति पाना है, तो बहुत जरूरी है। चलो शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।